చందేసు నిమ్మలయరా ఆయిచేసు అయ్యం పయాకైరా సాగర వర గంభీరా సిద్ధా సిద్ధిం మమ దిశంతు సిద్ధా సిద్ధిం మమ దిశంతు. ఇస్ ప్రేయర్ మే భగవాన్ సే ప్రార్థనా కీ గయీ హై హే ఈశ్వర్ तुम चांद की तरह निर्मल हो, सूर्य की तरह तेजस्वी हो, सागर की तरह गहरे हो, सिद्ध बुद्ध मुक्त हो. मैं आपके चरणों में विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे आपकी तरह सिद्ध बुद्ध मुक्त बनाएं. मैं मंच पर विराजमान सभी विद्वत और विदुषी गण तथा मंच के सामने विराजमान सभी वेदांतियों के शुद्ध आत्म स्वरूप को नमन करता हूं, आपके ईश्वर स्वरूप को नमन करता हूं. क्योंकि वेदांत और योग दोनों कहते हैं कि मनुष्य के भीतर जो आत्मा विराजमान है वही आत्मा शुद्ध रूप को प्राप्त कर मोक्ष को जाती है. मंच पर विराजमान भारतीय संस्कृति की ऋषि परंपरा और वेदांत का साक्षात जीवन जीने वाले हमारे स्वामी भावेशानंद जी और जिनके कारण आज हम ये वेदांत और योग विषय पर चर्चा कर रहे हैं, उसके निमित्त डॉक्टर एच पी नारायण जो कि आज देश में और विदेश में ख्याति प्राप्त हैं, उनके जीवन के बारे में हमने बहुत सुना कि उनका जीवन समाज को समर्पित है और प्रारंभ से ही सेवा का जीवन जी रहे हैं. मंच पर विराजमान डॉक्टर निवाई दास बैनर्जी और राजकुमारी जी सिन्हा जो हमारे अखिल भारतीय महिला दर्शन परिषद की अध्यक्षा है, इनके बारे में बताना चाहूंगा कि अभी फरवरी में मैं आया था, मुझे पैट्रन और गेस्ट के रूप में बुलाया था. इन्होंने कितनी बड़ी शक्ति का नियोजन किया है कि हमारी अखिल भारतीय दर्शन परिषद जो कि आजादी से पूर्व चल रही है लेकिन महिलाओं में सशक्तिकरण हो, महिलाओं में जागृति हो, तो इन्होंने एक भागीरथी प्रयत्न करके महिलाओं की एक अखिल भारतीय दर्शन परिषद की स्थापना करके और अखिल भारतीय महिला दर्शन परिषद जो कि इतने वर्षों 70 वर्षों से चल रही है उसके पैरेलल जो है इस संस्था के अंदर वही क्वालिटी पैदा की है. डॉक्टर ज्योतिषना श्रीवास्तव जो कि हमारी अखिल भारतीय महिला दर्शन परिषद की एक जागरूक सदस्य है और जन जन तक दर्शन कैसे फैले और आप उस पावन जो वाराणसी नगरी में प्रोफेसर है BHU जिसकी की पंडित मदन मोहन मालवीय जो के हाथों में जिस स्थापना हुई थी उस जो है परम पावन विश्वविद्यालय से आप हैं और हमारे जो बहन जी मिश्रा बहन जी विराजमान है सभी को नमन करता हूं. मैं आज का विषय जो है मुझे जो निर्धारित 15 मिनट का समय है उसमें ये बताना चाहूंगा कि वेदांत और योग आज के इस ग्लोबलाइजेशन के युग में उनकी क्या रिलीवेंस है, क्या उपयोगिता है. और मूल बात मैं ये बताना चाहूंगा कि इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज हम एक संकल्प लेकर के यहां से जाएं कि हमारा जीवन वेदांत और योग से जुड़ करके एक आदर्श जीवन बने. बहुत परिभाषा दी जा चुकी है कि वेदांत की परिभाषा करें तो वेद प्लस अंत इसका आधार उपनिषद है, इसकी शाखाएं द्वैत अद्वैत विशिष्ट अद्वैत छह में से मुख्य तीन शाखाएं हैं, जिसको आदि शंकराचार्य रामानुजाचार्य माध्वाचार्य बड़े बड़े ऋषियों ने इसको खूब आगे बढ़ाया। और इसके मुख्य जो सिद्धांत है कि हम ब्रह्माष्टमी ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, बंधुओं ये जो एक सार की बात है कि ब्रह्म जो है शाश्वत है, सत्य है, ब्रह्म परिपूर्ण है, पूरे विश्व का संचालन ब्रह्म करता है, ब्रह्म ऐसी अद्वितीय शक्ति है जिसको कुछ नहीं जानना होता और जिसको जानने के बाद में संपूर्ण ज्ञान अपने आप प्राप्त हो जाता है, जिसको जानने के बाद में कुछ करना बाकी नहीं रहता है, उसके हम अंश हैं, हम जीव हैं, सब उस ब्रह्म के अंश है और उस अंश में विलीन होना ये हमारे जीवन का लक्ष्य है बंधुओं। पर उसके बीच में क्या आता है, ऐसी कौन सी चीज है हमारे जीव के अंदर जो कि हम ब्रह्म न बनने देती है, वो है माया। भाइयों और बहनों, इस बारे में बताना चाहूंगा कि रियल और रिलेटिव, हमारा रियल ब्रह्म है, हम अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत शक्ति और स्वामी जी ने ब्लिस की बात कही, अनंत सुख के धनी हैं, हम नहीं, एक छोटा से छोटा वायरस 84 लाख जीवा योनि चार गति का हर प्राणी स्वयं परमात्मा बन सकता है, लेकिन उसके बीच में आता है माया। हम गृहस्थी हैं, हमारा परिवार है, हमारा देश है, हमारा समाज है, हम उससे मुक्त नहीं हो सकते, स्वामी जी की तरह सभी सन्यासी नहीं बन सकते, लेकिन उसमें रहते हुए हम किस तरीके से जीवन मुक्त राजा जनक की तरह बने, ये मुख्य बात है बंधुओं, और हम हो सकते हैं, यही वेदांत का लक्ष्य है और यही आज के इस कॉन्फ्रेंस का जो है मुख्य हमारे लिए जो लाभ है कि हम किस तरीके से जीवन मुक्त बन सकते हैं, बना जा सकता है। लक्ष्य की आवश्यकता होती है, संकल्प की शक्ति होती है, जिसका लक्ष्य महान होता है, जिसकी संकल्प शक्ति बड़ी होती है, वो बड़ा से बड़ा कार्य कर सकता है, क्योंकि हम स्वयं अत्यंत अनंत अनंत संपदा के धनी हैं, हमें कुछ करना नहीं है, उस संपदा को लिए हुए हैं, उसके ऊपर माया रूपी आवरण है, उस क्रोध मान माया लोभ मत्सर ईर्ष्या जो माया है उसको शुद्ध करना है बंधुओं। तो हम रियल और रिलेटिव को समझें, हर आत्म स्वरूप में हम रियल स्वरूप को देखें, मैं यहां बैठे हर जीव के अंदर शुद्ध आत्मा का अनुभव कर रहा हूं, पेड़ पौधों में शुद्ध आत्मा का अनुभव कर रहा हूं, जीव जंतुओं में शुद्ध आत्मा का अनुभव कर रहा हूं। बंधुओं, इस पर मुझे बात याद आ रही है, कबीरदास जी के पुत्र कमाल थे, कमाल को कबीरदास जी के यहां बकरी थी, कमाल को कहा कि तुम बकरी के लिए जाकर के घास फूस लाओ ताकि अपना भोजन कर सके, धूप लाने के लिए कहा गया, कमाल गया धूप काटने के लिए, तो कमाल रियल और रिलेटिव को समझता था, रिलेटिव यानी हमारा शरीर मन बुद्धि इंद्रिया और हमारा जितना ये पैकिंग है हमारा, जैसे मैं सोहन राज हूं तो ये रिलेटिव है, लेकिन इसमें जो विराजमान है वो शुद्ध आत्मा है, वो ब्रह्म का अंश है, हमें उसको प्राप्त करना है, हर क्षण हम उसको याद रखें, रियल और रिलेटिव का डिफरेंस को याद रखें। कमाल जब गए, देखा कि वो दोस्त को काटने के लिए जो ही आगे बढ़े कैटी लिए हुए, उन्होंने देखा शुद्ध आत्मा के दर्शन किए, उसमें वही आत्मा है जैसी मेरे में है, अनंत संपदा की धनी आत्मा उसके अंदर है, देखता रहा देखता रहा देखता रहा, नहीं उस धूप को नहीं काट सका और शाम को वापस ब्लैंक लौटा बिना लिए हुए। तो बंधुओं, ये क्या बताती है, ये बताती है आप इंजीनियर हैं, वकील हैं, आप संत हैं, आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, लेकिन वो हमारा रिलेटिव पार्ट है, उस रिलेटिव पार्ट में कार्य करते करते हुए हमारा जो ब्रह्म स्वरूप है, सत्य चित्त आनंद का जो हमारा स्वरूप है, जो हमारी अविनाशी आत्मा है, जो ज्ञान दर्शन की धनी है, और जिसका गुण क्या है, आनंद है, जो स्वामी जी ने बताया, जिसका लक्षण क्या है, ज्ञान और दर्शन है, और जिसका जो है गुण है वो आनंद है, वो हमारे में है, उसका स्मरण ईश्वर का स्मरण है, वो हमारा खुद का स्मरण है। तो वेदांत ये बताता है बंधुओं कि रियल और रिलेटिव में समन्वय करते हुए आपको संत नहीं बनना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, लेकिन इसके डिफरेंस को समझना है। आप रिलेटिव में रहिए, आप माँ हैं, आप सास हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप कुछ भी अपना काम करते रहिए, लेकिन हर क्षण ये ध्यान रखिए कि मैं ब्रह्म का अंश हूं, मैं देवत्व का धनी हूं, मैं अनंत ज्ञान वाला हूं, अनंत दर्शन वाला हूं, मैं अक्षय हूं, मैं अरूपी हूं, मैं अव्यक्त हूं। उस हमारे स्वरूप को हम ध्यान करके जब हम अपना कार्य करेंगे तो बंधुओं निश्चित ही ऐसा सोचने वाला व्यक्ति कमाल की तरह कोई करप्शन नहीं कर सकता, कोई गलत कार्य नहीं कर सकता, कोई भी दोष का भागी नहीं बन सकता। बंधुओं यही मैं वेदांत से समझ पाया हूं। अब मैं योग दर्शन और शिक्षा का विद्यार्थी हूं और आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों की राजकुमारी मैडम बैठी हैं कि हमारी प्रोफेसर लोगों की, टीचर लोगों की क्लास 45 मिनट की मिनिमम होती है, और हम विश्वविद्यालयों के अंदर भारत के 55 दर्शन जो कि हमारे सिलेबस में है हम विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। मैं जैन दर्शन का स्पेशलाइज हूं मान लीजिए, लेकिन मैं सभी तरह के दर्शन पढ़ता हूं, पढ़ाता हूं, रिसर्च कराता हूं। योग की बात कहें बंधुओं, 25 तरह के योग, और आज नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे ऐसे महान प्राइम मिनिस्टर को जिन्होंने जो हमारी भारतीय संस्कृति का मूल हार्ट योग है उसको पूरे विश्व के अंदर 21 जून को योग दिवस के रूप के अंदर यूएनओ के अंदर उसको पास किया और 200 देशों से जो है ये स्वीकार कराया कि योग ऐसी पद्धति है जिसे मनुष्य अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है, भौतिक विकास कर सकता है, आध्यात्मिक विकास कर सकता है, स्वास्थ्य का विकास कर सकता है। और योग के अंदर इतनी ताकत है बंधुओं कि ये हमारा जो है शारीरिक स्वास्थ्य दे सकता है, मानसिक स्वास्थ्य दे सकता है, भावनात्मक स्वास्थ्य दे सकता है, स्पिरिचुअल हेल्थ दे सकता है और सोशल हेल्थ दे सकता है। और योग के अंदर सबसे बड़ी ऐसी ताकत है बंधुओं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। योग एक ऐसा मैजिक है, आप अभी योग कीजिए और अभी रिजल्ट हाथों हाथ प्राप्त कीजिए, समय नहीं है। योग करवाता हूं विद्यार्थियों को, 18 साल से वानप्रस्थ जीवन जी रहा हूं और गुरु कृपा से मैं यहां विराजमान स्वामी जी को बताना चाह रहा हूं कि मैंने बच्चों की तरह पाल पोष करके ब्रह्मचारिणी 100 बालाओं को उनका मां बाप रूप में रह करके योग की शिक्षा देकर के उनको सन्यासी बनाया, जैन साधु साध्या बनाया। कितना मुझे गुरु का मेरे पर उपकार है। तो मैं बताना चाह रहा हूं बंधुओं, योग एक ऐसी धारा है जो कि व्यक्ति अगर प्राप्त करे, जैसे अभी हम वर्तमान में अष्टांग योग की बात करते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इस पर घंटों घंटों चर्चा की जा सकती है, भी समय नहीं है। लेकिन बंधुओं इसका एक एक विषय जो है हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है कि हम एक आदर्श इंसान बन सकते हैं सबसे पहले, क्योंकि इंसान में इंसानियत होनी जरूरी है। और आज ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन युग के अंदर कोई एक सबसे जरूरी बात है वह यह है कि वन वर्ल्ड वन स्काई वन रिलीजन वन अर्थ एंड व्हाट इज दैट रिलीजन इज मानव धर्म। बंधुओं योग और वेदांत अपने आप में परिपूर्ण है। अगर इन दो धाराओं को अपने जीवन में पनपा लें तो हम भी ब्रह्म के अंश होने के कारण अपने आप में पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं, अपने स्वयं के जीवन को धन्य बना सकते हैं। हमें संकल्प शक्ति की जरूरत है, हमें हमारे लक्ष्य बनने की जरूरत है। और लक्ष्य भी क्यों बने, मैं साथ साथ में दर्शन का विद्यार्थी भी हूं, बताना चाहता हूं कि आध्यात्म प्रारंभ कहां से होता है। स्वामी जी ने बताया, हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है। जब ये प्रश्न कभी मस्तिष्क में गूंजते हैं तो बंधुओं वहां से अध्यात्म चालू होता है, वहां से दर्शन चालू होता है और हमारे खुद की पहचान के बारे के अंदर जो हमारा एक ध्येय बनता है। और आज विश्व में पाश्चात्य और प्राच्य विद्याओं के अंदर सबका अल्टीमेट एम जो है वो इमांसिपेशन, साल्वेशन, मुक्ति। क्यों? इसमें ब्लिस है। हम जी रहे हैं, हमारे एक सुख के साथ में दूसरा दुख जुड़ा हुआ है, दुख आया सुख आया, इसकी निरंतर श्रृंखला, इसकी चेन चलती रहती है। लेकिन ईश्वर ने बताया, हमारे शास्त्रों ने बताया, भारतीय दर्शन ने बताया, वेदांत ने बताया, योग ने बताया कि मुक्ति जो हमारे चार पुरुषार्थ है, काम अर्थ धर्म और मोक्ष, हमारा गंतव्य मोक्ष है। भारतीय संस्कृति है, गंतव्य मोक्ष है। बंधुओं, दो संस्कृतियां चलती है, ईस्टर्न सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन। हमारा भारत धर्म क्यों, गुरु क्यों रहा? क्योंकि हमने मंच पर विराजमान ऋषियों की तरह, भारत को अंदर हमेशा ऋषि परंपरा रही है। भारत में प्रारंभ से ही आत्मा, पुनर्जन्म, सृष्टि, ईश्वर, कर्म, इसकी बातें कही है। हमने मात्र इंद्रिय सुख तक, मात्र भौतिक सुख तक ही हम नहीं अटके हैं, हमने अध्यात्म की बात की है। हमारा देश चरित्र प्रधान देश है, हमारा देश अध्यात्म प्रधान देश है। और यहाँ पर वेदों से लगा के आज तक हमारे ऋषि मुनि कैसा जीवन जी रहे हैं, हमारी ऋषि परंपरा आज भी प्रणम्य है, आज भी अनुकरणीय है, आज भी नमन है। क्यों? कि जैसा वेदांत क्या कहता है कि ब्रह्म के जब दर्शन करते हैं तो हमारी सारी डिजायर्स होती है वो मैट हो जाती है। चाह गई चिंता मिटी और मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए वही शहंशाह। हम शहंशाह मुक्ति के अधिकारी कब बनेंगे? जब इस संसार की हमारे शुद्ध आत्म अनुभव के अलावा इस संसार की कोई विनाशी चीज मुझे नहीं चाहिए, ये हमारे जब ध्येय में आएगा, ये हमारे चिंतन में आएगा, ये हमारे संकल्प में आएगा। जैसा मैंने रियल और रिलेटिव की बात कही, गाय जा रही है, वो रिलेटिव है, वो कर्म के कारण गाय बनी है, लेकिन उसके अंदर आत्म भगवत स्वरूप शुद्ध ईश्वर विराजमान है, आत्म स्वरूप, उसको भी नमन कीजिए। आप ये करके देखिए कि आप जब हरेक के अंदर ईश्वर स्वरूप को देखोगे, उसका नमन करोगे, उसका दर्शन करेंगे, तो आप कितने पॉजिटिव हो जाओगे। बंधुओं, हमारी जो एनर्जी है, जो प्राण है, पॉजिटिव और नेगेटिव, हमारा प्राण शक्ति जो बनती है वो भोजन, जल और वायु और पानी से बनती है, और प्राण शक्ति से जीवन संचालन होता है। नॉर्मल व्यक्ति जो है स्वास्थ्य केंद्र के नीचे जितना भी कामुकता, इंद्रिय सुख वगैरह, उसमें प्राण को नष्ट करता है। ऐसे योगी राज, यूपी के योगी राज, आप योगी राज, ये उस शक्ति को शहस्त्रता केंद्र तक ले जाते हैं और ज्ञान के धनी बनते हैं। बंधुओं, तो हमारे जितने भी केंद्र हैं जहां पर आत्मा का निवास होता है वो योग सिखाता है, बंद है, हमारी प्राण ऊर्जा है। बड़े बड़े एक एक विषय पर घंटों घंटों पर चिंतन किया जा सकता है, लेकिन कि अनुशासन बड़ी चीज होती है। जो हमारे महर्षि पतंजलि ने जो पतंजलि योग सूत्र लिखा, अथ अनुशासनम, यानी अनुशासन की बात होती है, तो मेरा समय भी पूरा अतिक्रमण नहीं करना चाहता, तो मैं आज के विषय के ऊपर निष्कर्ष की बात में कहना चाहता हूं। बंधुओं, के जीवन को मोड़िए। वैदिक संस्कृति कहती है कि आज कोई सत्य कार्य करोगे तो नौ भव के बाद में मनुष्य जन्म मिलेगा, अगर कोई चूक हो गई तो 99 भव के बाद में मनुष्य जीवन मिलेगा उसमें भी चूक होगी। 999 भव के बाद में मनुष्य जन्म मिलेगा। मनुष्य जीवन इस सृष्टि का सबसे सर्वोत्कृष्ट प्राणी है, वो सबसे ज्यादा भगवत भक्ति कर सकता है, वो ज्ञान योग कर सकता है, भक्ति योग कर सकता है, कर्म योग कर सकता है बंधुओं, क्योंकि सबसे जो ईश्वर ने हमें जो ये बुद्धि दी है, अगर वो सही दिशा में चले तो हम मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं, और गलत दिशा में चले तो हम आतंकवादी भी बन सकते हैं, उग्रवादी बन सकते हैं। आप सब परिचित है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बुद्धि का दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन हम वेदांत के प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं, तो आज संकल्प करें, जीवन का लक्ष्य बनाएं कि मनुष्य जीवन की सार्थकता रखनी है। किस भी प्लेटफॉर्म पे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, तो रियल रिलेटिव का डिफरेंस करो। आप गृहिणी हैं, गृहिणी कार्य सुचारू रूप से करिए, लेकिन आपके दिमाग में हर वक्त ब्रह्म का चिंतन चलना चाहिए, देवत्व का चिंतन चलना चाहिए, शुद्ध आत्मा का चिंतन चलना चाहिए, और हरेक के अंदर प्राणी मात्र में जो शुद्ध आत्मा का अनुभव करना चाहिए बंधुओं। तो ये आज के इतनी दो बड़े बड़े ध्रुव हमारे भारतीय चिंतन धारा के, वेदांत और योग, दोनों हमारे जीवन की धारा को बदल सकते हैं। ये हमारे भारतीय संस्कृति के मुख्य सूत्र है, भारतीय संस्कृति की मुख्य विधा है, भारतीय संस्कृति के दोनों मुख्य दर्शन है। एक हमें सिद्धांत देता है वेदांत, और योग हमें प्रैक्टिकल करने को देता है। बंधुओं, हमारे पास थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है, इसीलिए हम संपूर्ण है और हम परिपूर्ण ब्रह्म के अंश के रूप में बढ़ते बढ़ते ब्रह्म में विलीन हो सकते हैं, मोक्ष को, मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आज हम इस जो है कॉन्फ्रेंस के माध्यम, जो मैंने तो अपना लक्ष्य 18 साल पूर्व बना दिया था, धन संपत्ति परिवार गृहस्थी हूं, लेकिन फिर भी 18 वर्ष से गुरु के योग से जो है इसी तरह कॉन्फ्रेंस प्रतिदिन कहीं न कहीं प्रवचन कॉन्फ्रेंस ये शिक्षा पढ़ना पढ़ाना, और उसमें बड़ा आनंद महसूस करता हूं, और हर वक्त हर प्राणी के अंदर भगवत स्वरूप शुद्ध आत्मा के दर्शन करता हूं, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर मेरी प्रज्ञा जागृत रखना, जो कि मुझे हर वक्त मेरे दोस्त बताती रहे। बंधुओं, जो कुछ आपके सामने आता है वो हमारा किया हुआ कर्म आता है, वो हमारा ही दोष है, उसमें किसी का दोष ये बुद्धि है दूसरे के दोष निकालती है। प्रज्ञा, स्वामी जी बैठे हैं, हे ईश्वर मेरी प्रज्ञा जागृत करो कि मैं हर वक्त मेरे ही दोष देखूं, जब कभी मेरे दूसरे दोष देखने की बात आए तो प्रज्ञा मुझे अंदर से अलर्ट करती है, नहीं, जो कुछ भी आया तुम्हारा किया हुआ कर्म है, तुम्हारा पूर्व भव में इस भव में कोई भी तुमने एक्टिविटी की है उसका ही पुण्य पाप के रूप में फल आ रहा है। बंधुओं, हमारी ऐसी रिक्त संस्कृति, जब हम धर्म गुरु रहे हैं, सोने की चिड़िया रहे हैं, और आज जो हिंदुस्तान में वातावरण बन रहा है, पुनः हिंदुस्तान आज सोने की चिड़िया और धर्म गुरु देश की ओर प्रयाण हो चुका है। बंधुओं, आज समय बदल चुका है, हमारा उस परिवर्तन की धारा में हम जुड़े और अपने जीवन को जो है सेवा को समर्पित करें। नारायण सरो, इतने इतने बड़े बड़े लोग कितनी बड़ी बड़ी सेवाएं करते हैं, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा को महत्व दिया है। समाज का हमारे पर ऋण है, वो ऋण सेवा से उतारा जा सकता है, चाहे तन की करो, चाहे मन की करो, चाहे धन की करो, और हम स्वार्थ से पराग की ओर जाएं। लिव एंड लेट अदर्स लिव, और परमार्थ तो बहुत बड़ी बात है, ऐसे ही ऋषि पुरुष ही परमार्थ कर सकते हैं। तो मैं मेरे स्टूडेंट्स को 3 स्लोगन दिया करता हूं, आप वो स्लोगन मेरे साथ बोलेंगे। थिंक पॉजिटिव, बोलिए 3 बार मेरे साथ बोलना है, थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, टू पॉजिटिव, टू पॉजिटिव, टू पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। आप देखिए पॉजिटिविटी की आप में वो कितनी एनर्जी होती है, और नेगेटिविटी कितनी एनर्जी घटती है, और कैसे सुंदर इंसान बनते हैं। आप सभी जल्दी से जल्दी जो है ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो, मेरी मंगल भावना, शुभकामना सभी वेदांतियों को।